ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 1 श्लोक संख्या 62। लेकिन कुछ भक्त लोग कह रहे हैं कृतु प्रभु ने सारे श्लोक पहले से ही चर्चा में ले लिए हैं, इनकी चर्चा कर चुके हैं, है प्रभु जी, तो क्या आज्ञा फिर मेरे लिए? मुझे धर्मात्मा प्रभु ने बोला है कि 62वें श्लोक पर मुझे बोलना है, तो ये बोर्ड पर है, इसमें प्रभुपाद जी का ज्यादा तात्पर्य भी नहीं है, पर कुछ तो है, कोशिश करेंगे कुछ चर्चा करने की। तो कृपया श्लोक दोहराने का प्रयास कीजिए। वैतानि कर्माणि यन्न नाम्नाभिर्ब्रह्मवादिभि आज्ञय इष्टया यज्ञे निरूपयन्ते गणयस्तुते। वैतानि के कर्माणि यन्न नामा भी ब्रह्मवाद वाद भी आग्नेया इष्टयो यज्ञे निरूपयन्ते गणयस्तुते। वैतानि के कर्माणि यन्न नामाभिर्ब्रह्मवादिभि आग्नेया इष्टयो यज्ञे निरूपयन्ते गणयस्तुते। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की वैतानि के आहुति डालना, कर्मणि कर्म, यत् अग्नि देवों का नाम भी नामों से, ब्रह्मवादी भी निर्विशेषवादी ब्राह्मणों द्वारा, आग्नेय अग्नि के लिए, इष्टया यज्ञ, यज्ञ यज्ञ में, निरूप्यन्ते लक्ष्य है, अग्नाय 49 अग्निदेव 49 तू लेकिन ते वे। अनुवाद कृपया ध्यान से सुनिए। ब्रह्मवादी ब्राह्मणों द्वारा वैदिक यज्ञों में दी गई आहुतियों के लिए भोक्ता ये ही 49 अग्निदेव हैं। कृपया दोहराइए। ब्रह्मवादी ब्राह्मणों द्वारा वैदिक यज्ञों में दी गई आहुतियों के भोक्ता ये ही 49 अग्निदेव हैं। हिंदी में ब्रह्मवादी भी में ब्रह्मवादी का अनुवाद यहां पर शब्दार्थ में लिखा है निर्विशेषवादी, अनुवाद में लिखा है ब्रह्मवादी और तात्पर्य में लिखा है निर्गुणवादी। इंग्लिश में श्रील प्रभुपाद जी तीनों जगह इम्पर्सनलिस्ट लिखते हैं, इम्पर्सनलिस्ट। तो हम इम्पर्सनल शब्द को लेके ही थोड़ा अच्छा अच्छा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ ब्रह्मवादी भी निर्विशेषवादी पहले शब्दार्थ में, फिर अनुवाद में ब्रह्मवादी ब्राह्मणों द्वारा, और तात्पर्य पढ़ेंगे हम। तात्पर्य निर्गुणवादी या वेदवादी सकाम वैदिक यज्ञ करके विभिन्न अग्नि देवों की ओर आकृष्ट होते हैं और उनके नाम की आहुति देते हैं। इन 49 अग्निदेवों का वर्णन इस प्रकार है। तो इस अध्याय का भी अंतिम पड़ाव चल रहा है। कुछ लोगों बाद इस ये अध्याय मतलब संपन्न हो जाएगा। तो इस अध्याय को थोड़ा सा हम संक्षेप में इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। यह अध्याय की शुरुआत हुई थी, यह अध्याय का नाम ही मनु पुत्रियों की वंशावली है, मनु की पुत्रियों की वंशावली। तो उसमें मनु की 3 पुत्रियों के बारे में बताया, आकुति, देहूति और प्रसूति। पहले आकुति माता के संतान या वंशावली के बारे में बताया गया। आकुति का विवाह प्रजापति रुचि से हुआ और उनके 1 पुत्र जिसका नाम यज्ञ था और 2 पुत्रियां उनकी हुई, दक्षिणा और लक्ष्मी। इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करी मैत्रेय मुनि ने विदुर जी से। तो जब वो देहूति के बारे में बता रहे थे, देहूति का विवाह करदम मुनि से हुआ, उनकी 9 पुत्रियों के बारे में बता रहे थे, तब अनुसुईया और अत्रि मुनि के बारे में चर्चा आई। अनुसुईया और अत्रि मुनि के बारे में जब वो बता रहे थे, तो उन्होंने मैत्रेय मुनि ने जब बताया कि उनके 3 पुत्रों उनको 3 पुत्र प्राप्त हुए अनुसुईया के, जो कि ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव के अंशावतार थे। तो एकदम से विदुर जी ने प्रश्न कर दिया, ये एक भक्त की या शुद्ध भक्त की, विदुर जी तो शुद्ध भक्त हैं, ये एक उसमें नेचुरल कह लीजिए प्रकृति, उसकी प्रकृति होती है, जब भी भगवान विष्णु या कृष्ण के बारे में कुछ भी चर्चा होती है, एकदम से वो पूछता है ऐसा कैसे हुआ। पूरी भागवतम में हम ये सुनेंगे बार बार। अगर हम जैसे साधकों के मन में अगर ऐसे प्रश्न नहीं आते, तो हमें सोचना चाहिए था क्यों नहीं हो रहा। इसका मतलब भी हमारा भगवान से इतना राग नहीं हुआ है। इसका सिंपल सा साधारण सा उदाहरण जब हम समझने का प्रयास करें, कि मान लीजिए माताएं इसको बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। मान लीजिए आपका पुत्र कहीं विदेश में कार्य करने गया है और आप उसको नहीं मिल पा रहे, और उसकी कोई जरा सी भी चक्कर एकदम से कान खड़े हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि वहां पर अभी आसक्ति है। लेकिन कृष्ण चर्चा में अगर आसक्ति नहीं आ रही, एकदम से सचेत नहीं हो रहा मन, और माफ कीजिएगा कहने में थोड़ा सा बुरा तो है, अगर कथा में नींद आ रही है तो अभी आसक्ति या उसकी शुरुआत भी नहीं हुई, अभी नींद आ जाती है, तो भक्त को एकदम सचेत हो जाना चाहिए और सोचना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। और भगवान से जप करते समय प्रार्थना करनी चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्षमा मांगनी चाहिए भगवान से कि भगवान आपकी कथा में मुझे अभी भी नींद आ जाती है, तो कृपया करके कुछ कीजिए, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं। तो जैसे ही विदुर जी ने सुना विष्णु के बारे में, तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हुआ, माफ कीजिएगा, हाँ विदुर जी ने, तो मैत्रेय मुनि उसके बाद फिर उसकी चर्चा करते हैं पूरा, जैसे आपने सुना पिछले श्लोकों में, और 17 श्लोकों में वो पूरी चर्चा आई है कि कैसे अनुसुईया और अत्रि मुनि विवाह के बाद तपस्या करने गए। पिछली कथा में भी जो हमने प्रयास किया था ये समझाने का, विशेषकर ग्रस्तों को, कि जब भी मतलब ये सारे ऋषि मुनि भागवतम में हैं, ये सिखा रहे हैं अपने कार्यों के द्वारा अपनी, कि विवाह के बाद एकदम से तपस्या के लिए गए। श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद क्या तपस्या दिया, अगर संतान की उत्पत्ति करनी है तो कम से कम 64 माला पति और पत्नी दोनों को करनी चाहिए ध्यानपूर्वक। ये साधारण सी तपस्या दी है 64 माला। तो उस वक्त अनुसुईया जी और अत्ति मुनि दोनों एक साथ गए और उस पर्वत के बारे में बताया गया, इतना सुंदर पर्वत है। तो इससे पता चलता है कि वो कितना उनको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण था, कितने सुंदर पर्वत में गए हैं, पानी के झरने बह रहे हैं, बहुत सुंदर वातावरण है और फिर वहां वो तपस्या कर रहे हैं। कोई आम मतलब जो भी भागवतम में जो चरित्र है वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी उसके एक तात्पर्य में लिखते हैं कि अत्रि मुनि शुद्ध भक्त नहीं है। फिर हमें सोचना चाहिए कि प्रभुपाद जी ऐसा क्यों लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने पिछली चर्चा में भी ये सोचा था, ये चर्चा की थी कि प्रभुपाद जी हमें दिखाना चाहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु क्या देने आए हैं हमें। ऐसे महान भक्तों को जो जैसे कि अत्रि मुनि हैं, जो दिखा रहे हैं अपने आचरण के द्वारा कि कितना उनका इंद्रियों पर संयम है, 100 साल तक उन्होंने तपस्या करी एक टांग पर खड़े होके, उनको भी ज्ञान नहीं है कि अगले श्लोकों में बिल्कुल साफ हो जाता है। अत्रि मुनि खुद पूछते हैं भगवान शिव से, ब्रह्मा जी से और विष्णु जी से, मैंने तो इस भगवान इस संसार के जो नियंत्रण है, जो नियंत्रक हैं, जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, उनको बुलाया था, आपने कौन है। स्वयं श्लोकों में बात आई है। तो प्रभुपाद जी इसलिए लिख रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मत संघ के सदस्य हैं या जो गौड़िया वैष्णव हैं, उन्हें समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु क्या देने आए हैं। बोलो करे कृष्ण प्रेम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मत संघ में बच्चा आता है या कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको से मुश्किल से पहले दिन या दूसरे दिन तीसरे दिन ही बता दिया जाता है कि कौन है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, या परम भगवान कौन है। तो हमें उस जो भाग्य है, जो हमारा सौभाग्य है, उसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि हम इस कलयुग में हमारा जन्म तो हुआ है, ये शरीर तो हमें मिला है, लेकिन बहुत भाग्यशाली है। बहुत भाग्यशाली के होने के साथ साथ हम वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ प्रभुपाद जी के शरण में आ गए। चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा था मैं लखपति के अलावा किसी के घर प्रसाद नहीं लेता। लखपति अर्थात जो कम से कम 64 माला करता है, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें कम से कम 16 माला करने के लिए बोल दिया। तो इसलिए मैं इस अध्याय के थोड़ा सा चर्चा करना चाहता था पीछे से, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है इस अध्याय के, जो हमें जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम जो 16 माला हमें करनी है, जो हमें साधना दी है, जो हमारी तपस्या है, उसको बहुत ध्यान से करना चाहिए, बहुत ध्यान से। सर्दी गर्मी बरसात जैसे भी हो, इस मन को जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं समझाना चाहिए, सुबह झाड़ू लेके और शाम को किसी भी तरह, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब बहुत सख्त रहना चाहिए अपने प्रति, दूसरे के प्रति नहीं, अपने प्रति, अपनी साधना के प्रति। तो ये अनुसुईया और अत्रि मुनि जी ने अपने चरित्र से सिखाया हमें, और प्रभुपाद जी ने और कृपा करके अपने तात्पर्य के द्वारा हमें समझाया या समझाने का प्रयास करा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ या चैतन्य महाप्रभु जी क्या देने आए हैं हमें। उसके बाद कर्दम मुनि और देवहूति की जो और 8 पुत्रियां थी उसके बारे में चर्चा करी विदुर जी ने। तो 52 तक ये श्लोक संख्या लगभग 16 से या 48 से 52 के तक ये चर्चा चली। उसके बाद स्वयंभू मनु की जो तीसरी पुत्री थी उनका नाम है प्रसूति। 3 पुत्रियां थी, आसुति, देवती और प्रसूति। तो प्रसूति जी के बारे में बता रहे हैं कि प्रसूति जी का विवाह जो हुआ वो धर्म नामक प्रजापति से हुआ। उनकी 16 पुत्रियां थी, 13 पुत्रियों का विवाह धर्म नामक प्रजापति से हुआ और 1 पुत्री का विवाह स्वाहा का अग्नि नामक प्रजापति से हुआ, जिसकी चर्चा आज के श्लोक में है। और इसके बाद 61, 62 और नहीं माफ कीजिएगा, इसी में ये दो श्लोकों में ये स्वाहा जो अग्नि से जो पुत्रियां या पुत्र हुए उनके बारे में चर्चा है। उसके बाद जो स्वधा नाम की उनकी एक पुत्री थी उसका विवाह पितरों से हुआ, उसके बारे में भी चर्चा आएगी। और फिर एक पुत्री है सती, जो प्रसूति और दक्ष की जो पत्नी है वो सती, उनका विवाह शिवजी से हुआ, जिसके बारे में अगले फिर ये स्कंद चलेगा। क्योंकि उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब विदुर जी बोलते हैं मैत्री मुनि को कि भगवान जी ये दक्ष जो थे वो अक्सर रेगुलर भगवान शिव का अनादर करते थे, लास्ट आखिरी श्लोक में बताएंगे ये अक्सर अनादर करते थे, एकदम से विदुर जी भी सतर्क हो गए। अच्छा, फिर वो प्रश्न पूछेंगे क्यों करते थे अनादर, फिर वो दक्ष की कथा चलेगी पूरी, सती और दक्ष के बारे में जो कथा वो पूरी एक अध्याय है उसके बारे में अगला। तो ये है भगवान के भक्त, मच्चिता मद्गत प्राणायाम बोधयंता परस्परम कथयंतिष्ठा मां नित्यम दुष्यंति चा रमंति चा। विदुर जी और मैत्री मुनि वो कथा की चर्चा कर रहे हैं आनंद लेने के लिए, उन्हें आनंद आ रहा है, और हम भक्त लोग कथा की चर्चा करनी चाहिए अपने शुद्धिकरण के लिए। इसीलिए जो श्रीमद् भागवतम कथा रखी है प्रभुपाद जी ने, इसीलिए कि भक्त लोग इकट्ठे होकर एक व्यक्ति बोले और बाकी उसको सुने और फिर बाद में जो प्रश्न है वो पूछें। इसे कहते हैं कथयन तिष्ठा नित्यम, हर रोज बोधयंता परस्परम, बोधयंता पूछते हैं एक दूसरे से। तो ये जो प्रोग्राम प्रभुपाद जी ने रखा है, ये संपूर्ण श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद स्मरणम जो नौ अंग है भक्ति के वो सारे इस कार्यक्रम में आ जाते हैं। इतना ये जो इस श्लोक में हम सीखने को मिलता है हमें, इसमें भी जो जब ये धर्म और प्रजा जो धर्म से जो पुत्र का जन्म हुआ नारायण जी नर नारायण, उसके बारे में भी चर्चा करी है तीन चार श्लोकों में। और आज के श्लोक में ये जो बताया है ये जो स्वाहा और अग्नि से जो पुत्र उत्पन्न हुए या पुत्रियां उत्पन्न हुई उनके बारे में बताया गया है। इस श्लोक में जो प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं, इसमें जो अंग्रेजी में मैंने आपको शुरू में ही बताया कि उन्होंने प्रभुपाद जी ने इम्पर्सनलिस्ट लिखा है, इम्पर्सनलिस्ट का हिंदी अनुवाद उसमें तीन तीन जगह तीन तीन वो लिखे हुए हैं, निर्विशेषवादी, निर्गुणवादी और ब्रह्मवादी। और इम्पर्सनलिस्ट का जो हमारी समझावट है वो मायावादी, इज इट नॉट, मायावादी को नहीं कहते इम्पर्सनलिस्ट, ये सब जी मायावादी की अंग्रेजी क्या होती है, इम्पर्सनलिस्ट राइट। तो यहां पे ब्रह्मवादी लिखा है और उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो अग्नि देवों की ओर आकृष्ट होते हैं, कि वह सकाम वैदिक यज्ञ करके विभिन्न अग्नि देवों की ओर आकृष्ट होते हैं। तो इस बात पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि वो क्यों आकृष्ट होते हैं। मायावादी जो व्यक्ति होते हैं या मायावादी जो मायावाद से ग्रहणित हैं या जो मायावाद को समझते हैं कि यही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, उनकी सबसे बड़ी कमी जो होती है वो भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि हम लोग अभी माया में हैं और इस शरीर जब हम छोड़ देंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे एक दिन। तो उनकी सबसे बड़ी कमी यही होती है और प्रभुपाद जी ने इसके बारे में बहुत अच्छे, चैतन्य महाप्रभु ने ही अपने जीवन में समझाया बहुत अच्छे से, मायावादी भाष्य सुन ले हो सर्वनाश, सर्वनाश हो जाता है। बहुत अच्छे से वो भी कथाएं करते हैं क्योंकि अगर वो कृष्ण का या भगवान श्री राम का या इनका सहारा नहीं लेंगे तो सुनाएंगे क्या, आम जनता को सुनाएंगे क्या, कुछ नहीं। वो सब कथाएं कहेंगे और ऐसे और आखिर में कहेंगे कि आप भी एक दिन भगवान बन जाएंगे। अभी आप माया के चंगुल में हैं, और जब आप साधना करेंगे उसके बाद शरीर छोड़ने के बाद आप भी भगवान बन जाएंगे। तो प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि महामूर्खों को यह समझ नहीं आता, अगर हम अभी माया के अंदर में, तो इसका मतलब जो हम भगवान बन जाएंगे वो भगवान माया से कम शक्तिशाली है, माया ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए हम उसके अंदर में है, उसके नियंत्रण में है। तो इसका मतलब भगवान परम जो है, जिसको वो कहते हैं, जिसका वो जो मतलब वो उसे कमजोर है, उसकी शक्ति कम है, कहते नहीं, कृष्ण हमेशा परम शक्तिशाली रहते हैं, वो चाहे छोटे से बच्चे हों चाहे पूरे यौवन में हो। इसीलिए भगवान कृष्ण लीलाएं करने आते हैं, दिखाने के आते हैं ऐसे बद्ध जीवों को, हम जैसे बद्ध जीवों को, कि देखिए प्रभुपाद जी ने तो कृष्ण बुक के जो पहले जो आता था संस्करण, उसके पीछे लिखा होता था पूरा पूरा कि कृष्ण शुरू से ही, यानी जन्म से ही कृष्ण भगवान है, उन्हें भगवान बनने के लिए कोई योग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप में से पढ़ा हो, उन्होंने पीछे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कि कृष्ण बचपन से ही सर्वोच्च भगवान है, परम भगवान है, भगवान बनने के लिए उन्हें योग करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मायावादी या अक्सर लोग कहते हैं कि आप योगा कीजिए और आप नारायण बन जाएंगे, नमो नारायण। ये बेवकूफी है, महामूर्खता है ये। तो इसी बात को प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं कि वो सकाम वैदिक यज्ञों को यज्ञ करके विभिन्न अग्नि देवों की ओर आकृष्ट होते हैं, मतलब यज्ञ करते हैं तो अग्नि देवों के नाम लेते हैं, और जब कृष्ण भावनामृत में यज्ञ होता तो किसके नाम लेते हैं, कृष्ण के अलग अलग नाम लेते हैं। मुकुंदत्ता प्रभु ने पूछे कितने कृष्ण के नाम आते हैं, मधुसूदनाय नमः स्वाहा, तो अलग अलग, फिर भगवान के अलग अलग अवतारों के सब केवल कृष्ण के नाम होते हैं उसमें। आप में से शायद कुछ लोगों ने करवाया होगा यज्ञ, गृह प्रवेश यज्ञ या कोई भी यज्ञ, तो आप ध्यान देंगे सारे कृष्ण के नाम होते हैं। इवन जो उस पर वो मटके रखे जाते हैं यज्ञ होती पे, वो भी संकर्षण, ये वो भगवान के ही नाम होते हैं, कोई देवी देवताओं को पूजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कृष्ण भावना में व्यक्ति या जीव ये समझ जाता है कि मैं अगर वृक्ष की जड़ में पानी डालूंगा तो सारे टहनियां, सारे पत्ते, सारे फल, सबको पानी पहुंच जाता है। इसे कहते हैं इस जो शिक्षा को जीवन में उतारना। लेकिन ब्रह्मवादी या जो यहां पे लिखा निर्गुणवादी या निर्विशेषवादी या ब्रह्मवादी, ये सब वैदिक यज्ञों में देवी देवताओं के प्रति आकृष्ट रहते हैं, क्योंकि कुछ फल की इच्छा चाहते हैं। लेकिन यहां पर जो कृष्ण भावना में जो जीव होता है, जो व्यक्ति होता है, वो इसको इससे कोई सारोकार नहीं होता, वो उनकी रिस्पेक्ट तो करता है, उनका सम्मान तो करता है, सम्मान तो वो चींटी का भी करता है, लेकिन अलग से उनकी पूजा नहीं करता। पूजनीय केवल कृष्ण है, आराधनीय केवल कृष्ण है, इस बात को बहुत अच्छे से समझता है। तो इसी बात को श्रील प्रभुपाद जी यहां समझा रहे हैं, वो लिखते हैं कि वो इससे बड़े आकृष्ट होते हैं, बड़े अटैच होते हैं इससे। और इन 49 अग्निदेवों का वर्णन इस प्रकार है, जो कि इसमें बताया नहीं गया, इन अग्निदेवों के नाम नहीं दिए गए यहां पर, अगले श्लोकों में कोई नाम नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने लिखा है, अगर किसी को पता चले तो कृपया बताइएगा, अगर कोई मेहनत कर सकता है इतनी, कि कौन कौन से 49 अग्निदेव होते हैं, होमवर्क है हम सबके लिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है वैसे होमवर्क करने की, भगवान कृष्ण के नाम याद कीजिए बस बहुत है, यशोदा नंदन कंस निसूदन हम रोज सुबह गाते हैं, यमुना तीर वनचारी रोज गाते हैं, हमारी सारी प्रार्थना ही वैसी है, कोई जरूरत नहीं है किसी भी देवी देवताओं के 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में नाम याद करने की, केवल कृष्ण। ब्रह्मा जी तो कहते भी हैं केवल कृष्ण, हमें केवल कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, जो स्वयं इस भौतिक संसार के करने वाले या बनाने वाले हैं। तो ये बात हमें यहां प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं कि इस प्रकार से हमें केवल कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और पिछले जो श्लोक में हमें सीखने को मिलता है, जो भगवान के जो भक्तों की जो चर्चा श्रीमद् भागवत में हुई है, वो सिखाते हैं कि हमें इन शिक्षाओं को जीवन में कैसे उतारना है। कैसे तपस्या करनी चाहिए, और श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत अच्छे से समझाते हैं कि हमारी क्या साधना है या हमारी क्या तपस्या है। एक आचार्य वो बताता है कि किस तरह से हमें तपस्या करनी है। आचार्य के शब्दों को बिल्कुल भी सरल तरीके से नहीं लेना चाहिए। आज जिसने दिया वो आंखें बंद करके उस रास्ते पे चलना चाहिए जो उसने किया। जो 16 माला करना कम से कम ध्यान पूर्वक उसको करना है, उसको सरलता से नहीं लेना चाहिए। अच्छा 16 माला कर लूंगा मैं, कैसे भी कर लूंगा, नहीं। मिनिमम 16 राउंड, कम से कम 16 माला। चार नियमों का पालन करना है। कभी कभी लोग समझते हैं चार नियम पालन करना आसान है, लेकिन अगर हम ध्यान से समझेंगे चार नियम क्या है तो समझ में आएगा कि कैसे आंखों की भी आंखों से नियम तोड़ते हैं, कानों से नियम तोड़ते हैं, किसी भी तरह का, जैसे मान लीजिए किसी भी तरह का व्यभिचार नहीं करना। अगर हम किसी भी तरह का व्यभिचार, एक सिंपल सा शब्द है, लोग कहते हैं भारत में तो आसान है, लेकिन अगर व्यक्ति टीवी भी देख रहा है तो वो आंखों से व्यभिचार तोड़ने का नियम तोड़ रहा है, क्योंकि उसका संबंध कृष्ण से नहीं है और कृष्ण पुरुष है और हम प्रकृति हैं। अगर हम अपने पुरुष के अलावा किसी और चीज से हम आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं तो व्यभिचारी है। अगर स्त्री अपने पुरुष के अलावा या पत्नी अपने पति के अलावा किसी और पुरुष के प्रति आकृष्ट हो रही है तो इसका मतलब व्यभिचारी है वो। इसी प्रकार से चार नियमों को बड़े ध्यान पूर्वक समझना चाहिए कि क्या है। कानों से अगर हम कृष्ण कथा के अलावा कुछ भी सुन रहे हैं, हम नियमों का भंगन कर रहे हैं। उस जप में आनंद नहीं आएगा, जो कृष्ण जो गोलों के प्रेम धर्म का आनंद है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, वो स्टेज आने में बहुत समय लग जाएगा। फिर बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तनम तब तो न पाए कृष्ण प्रेम पदे धन, बहु जन्म करने के बाद भी। इसीलिए जो आचार्य ने दिया उसको करना ध्यान पूर्वक। श्रील प्रभुपाद जी ने तो वो प्रार्थना ही बीच में डाली है, हमारे साधना के बीच में एक प्रार्थना ही है। शुरू भी उसी से होता है, बीच में भी हो जाता है। श्री गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त तय कर रही है क्या, नरोत्तम दास ठाकुर की जी की प्रार्थना, नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना है ना ये, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त तय कर रही है क्या। तो इन शब्दों को बड़े ध्यान से अगर हम समझेंगे, वैष्णव की सेवा करेंगे, तब दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होता है, तब इन शब्दों का मतलब समझ आएगा, तब श्रीमद् भागवतम के एक एक जो श्लोक है उसको समझेंगे, तब आनंद आता है श्रीमद् भागवतम सुनने में, तब एकदम से आंखें खुल जाती हैं, जैसे कृष्ण की चर्चा होगी एकदम से, क्योंकि फिर अब जो बीज है वो स्फुटित होने लगा है, जो कृष्ण प्रेम का बीज है वो होने लगा, शुरू होने लगा। जिसकी ये एक हमारा पैरामीटर है, एक क्या हमें जप करने में अभी आनंद आ रहा है या नींद आ रही है, क्या हमें कृष्ण कथा सुनने में अभी अच्छा लग रहा है या नींद आ रही है। लेकिन इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, अगर नींद भी आ रही है घबराइए नहीं, साधना तो करनी है, प्रार्थना। इसीलिए जो महामंत्र जब हम करते हैं उसको बड़े ध्यान पूर्वक करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने अभी एक क्लास हम सुन रहे थे, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य दे रहे थे, तो फिर हमें बार बार रिमाइंड करा रहे थे कि क्या प्रभुपाद जी ने बोला कि जब करते वक्त कैसा हमारा हृदय या हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए, कि जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माता के लिए रोता है, जिस चेतना में वो रो रहा है उसी चेतना में हमें जप करना चाहिए। आंसू पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, कब आएंगे, कृष्ण जाने वो तो, लेकिन हमें तो प्रयास करना है ये समझते हुए, उस बच्चे को याद करते हुए। ये अनुभव तो सबका होगा ना कि कैसे एक बच्चा रोता है जब उसकी माता उसे नहीं मिलती, तो उस चेतना में जब हम जप करेंगे तब यहां जो भक्त गण है जिनकी चर्चा श्रीमद् भागवतम में हुई है, क्योंकि इसमें बीच में बाद में बोला गया है कि जब हम इनके बारे में सुनते हैं तो हमारे सारे अनर्थ, सारे पाप, मतलब इसमें लिखा सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट होते हैं? ऐसे नष्ट होते हैं, ये विज्ञान है इसका, कि बहुत इसका सबसे पहला जो इस विज्ञान का सबसे पहला जो फॉर्मूला या जो तरीका है, विज्ञान मतलब साइंस, साइंस मतलब स्टेप बाय स्टेप हमने कुछ करना है। प्रभुपाद जी भी कई बार एग्जांपल देते हैं, अगर आपने पानी बनाना है तो हाइड्रोजन दो मात्रा में लेना है, ऑक्सीजन एक मात्रा में लेना है, तब पानी बनेगा। अगर आपने थोड़ी सी भी इधर उधर ढील करी तो पानी नहीं बनेगा, सारे दिन लगे रहिए हाइड्रोजन को मिलाते रहिए, ऑक्सीजन को मिलाते रहिए, सारी उम्र कुछ नहीं होने वाला, पानी नहीं मिलेगा, कुछ और मिल जाएगा शायद। इसी तरह से अगर हम कृष्ण प्रेम चाहते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य है हमारा, तो जो विज्ञान प्रभुपाद जी ने हमें दिया है इस साधना के रूप में, उसको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, पूरी शक्ति के साथ, क्योंकि जब हम अपनी पूरी प्रयास करेंगे तब कृपा आएगी। भक्ति धीर दामोदर महाराज जब वो कथा दे रहे थे यहाँ पे, तो उन्होंने बताया था दोनों चीजें होनी जरूरी है, हमारा प्रयास और कृपा। माता यशोदा जी की और दामोदर लीला से हमें बहुत अच्छे से सीखने को मिलता है कि माता यशोदा का प्रयास हुआ तब कृष्ण ने कृपा करी। बताइए, भगवान अपने शुद्ध भक्त माता यशोदा को भी नहीं छोड़ रहे, उनके जरिए हमें दिखाना चाहते हैं। फिर हमसे तो चाहेंगे ना कि हम थोड़ा प्रयास तो करें, तो हमारा प्रयास क्या है? यही ध्यान पूर्वक जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब भगवान कृष्ण कृपा करेंगे। और चैतन्य महाप्रभु तो महावदान्य अवतार है, प्रबोधानंद महाराज उस दिन क्लास में ये बता रहे थे कि जो व्यक्ति गुरु की शरण में रहता है वो बहुत भाग्यशाली होता है, और जो भगवान की सीधी शरण में रहता है वो हमेशा खतरे में रहता है। उन्होंने कथा भी सुनाई थी इसके बारे में, कालिया कृष्णदास नित्यानंद प्रभु के सेवक थे। एक बार वो चैतन्य महाप्रभु के साथ दक्षिण भारत की यात्रा में गए, तो किसी एक जगह पर पहुंचे जहां पर कुछ मतलब ईर्ष्यालु व्यक्ति थे, तो उन्होंने कालिया कृष्ण को देखा, उन्होंने कहा तो बहुत मतलब यंग थे, बिल्कुल यौवन अवस्था थी कालिया कृष्ण की और बड़े सुंदर दिखते थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो सन्यासी के साथ ये व्यक्ति घूम रहा है इसको हम अपने पास मतलब किसी तरह से अलग करेंगे। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर स्त्री को चुना और उसको कहा कि इसको आकृष्ट करो। वो स्त्री ने पूरी अपनी जो स्त्रियों की हाव भाव होते हैं उससे उसको आकृष्ट कर लिया, और कालिया कृष्ण भी आकृष्ट हो गए। देखिए चैतन्य महाप्रभु के साथ में है, और रात को जब चैतन्य महाप्रभु आराम कर रहे थे वो चले गए उठ के उस स्त्री के पास। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि वो चले गए, तो उनके घर से उसका बाल पकड़ के ले आए, कहते मूर्ख तुम नित्यानंद प्रभु की, ये तुम नित्यानंद की वो प्रॉपर्टी हो मेरे पास, तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा मैं, तुम्हें मैं नहीं जाने दूंगा माया में। तो पकड़ के लेके फिर वापस नित्यानंद प्रभु को दिया। ये थे नित्यानंद प्रभु के जो सेवक, लेकिन छोटा हरिदास जो उनके सेवक थे वो केवल चावल मांगने गए थे, और वो भी किसी यौवन युवक स्त्री से नहीं, वो मांगने गए थे किसी वृद्ध स्त्री से। जो चावल आए चैतन्य महाप्रभु ने प्राप्त ले लिया, तब पूछा ये कौन लेके आया चावल, तो उन्हें पता चला जी कि छोटा हरिदास जी लेके आए। किससे लेके आए? उनसे लेके आए स्त्री से। कहते तुम एक वैरागी हो के स्त्री से संभाषण करते हो, तो मेरी अब मेरा कभी दर्शन मत करना, चले जाओ यहां से। खैर इन लीलाओं से भगवान बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, लेकिन प्रबोधानंद महाराज ये बताना चाहते थे कि जो व्यक्ति गुरु की शरण में रहता है वो हमेशा बहुत 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 सुरक्षा की यश सौभाग्यशाली होता है। इसे प्रभुपाद जी और उनके रिप्रेजेंटेटिव की जो उनके जो शिष्य हैं उनकी शरण में रह के अगर हम भक्ति करेंगे तो हम बहुत सुरक्षित रहेंगे। चैतन्य महाप्रभु बालों से पकड़ के हमें भगवत धाम वापस ले जाएंगे। तो इसी प्रार्थना के साथ कि हम हमेशा जब तक ये जीवन है, गुरु और साधुओं के संग में रहते हुए, उनकी सेवा करते हुए, उनको प्रसन्न करके श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में जा सके। हरे कृष्ण। किसी का कोई कमेंट या प्रश्न? भाई बहुत अच्छी और सुंदर कथा आने वाली है दक्ष की, बहुत उसमें रोमांच है, युद्ध भी है और सब कुछ है। हमें कुछ और देखने की या पढ़ने की जरूरत नहीं है, श्रीमद् भागवतम ही पढ़िए, कैसे दक्ष ने और फिर पहले सती का, बहुत बहुत सुंदर कथाएं उसमें अभी आएगी। भगवान शिव मना भी करेंगे सती को भी मत जाओ, फिर भी जाएंगी वो, फिर वहाँ अपमान होगा, भगवान बोलेंगे भी, शिव जी बोलेंगे भी कि अपमान होगा तुम्हारा, फिर भी जाएंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो खूब अच्छे से तैयार होकर उस कथा को सुनने आइएगा। भगवान से प्रार्थना करते हुए, हे कृष्ण आपकी श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने जा रहे हैं, हमारे हृदय को पवित्र कीजिएगा जिससे हम आपके नामों के प्रति आकृष्ट हो सकें, साधु सेवा में लग सकें, समझ सकें कि आपके प्रचार में जो व्यक्ति लगा हुआ है वो आपको कितना प्रेमी है। अगर हम उनकी सेवा में लगेंगे तो आप हमसे प्रसन्न होंगे। प्रभुपाद अमेरिका में उदाहरण देते थे क्योंकि अमेरिका में बहुत आसानी से समझ आता है, इफ यू लव मी लव माई डॉग। विदेशों में कुत्ते बहुत रखते हैं लोग, उसका भी एक विज्ञान है वो कुत्ते क्यों रखते हैं, कभी समय मिलेगा तो हम चर्चा करेंगे। कुत्ते बहुत रखते हैं, तो अगर आप अमेरिका या विदेशी धरती पर, विदेशी में अगर आप किसी व्यक्ति को चाहते हैं कि उसका आकर्षण या आपको समझे या जाने, तो उसके कुत्ते को प्यार कीजिए, यानी उसके कुत्ते को कभी कुछ ला के खिलाइए तो वो कहेगा हाँ ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो हम लोग सब जो कंठी माला पहने हैं भगवान कृष्ण के या चैतन्य महाप्रभु के, कुत्ते जैसे बनना चाहते हैं, जैसे कुत्ता बहुत अपने मालिक के प्रति बिल्कुल वफादार होता है जो उसको खिलाता है। देखा ना आपने, तो शायद आपको इतना अनुभव ना हो भारत में रहने वालों को, लेकिन ये देखा गया है। ऐसे हमें बहुत ईमानदार, मतलब आसक्त रहना है प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु के इस मूवमेंट से। जब हम इसके प्रति आसक्त रहेंगे तो कृष्ण अपने आप देखेंगे हाँ ये व्यक्ति है। और चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं श्रीमती राधा रानी के मूड में है, और श्रीमती राधा रानी जब किसी भक्त को कह देते कि हाँ कृष्ण इसको अपनाइए, तो कृष्ण की शक्ति नहीं है कि उनको वो मना करें, कृष्ण को अपनाना ही पड़ता है। तो चैतन्य महाप्रभु की शरण में रहते हुए जब हम ये साधना करेंगे तो कोई इसमें शंका नहीं होनी चाहिए कि हम एक दिन भगवद्धाम जरूर जाएंगे। इसलिए ब्रजवासी, चलिए बोल देता हूँ, इसलिए ब्रजवासी, मैंने सुना था कि वो राधे राधे बोलते हैं, राधे राधे कृष्ण देखेंगे बोल रहे राधे राधे, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें बोला हरे कृष्ण। हमें इमिटेट नहीं करना ब्रजवासियों को, वो ब्रजवासी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम साधक हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के, और जो प्रभुपाद जी ने दिया उसको बड़े ध्यानपूर्वक और पूरी दृढ़ता से पूरा विश्वास रखते वो सेवा करनी है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरे हरे गौर।